نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سورت الاعراف کی آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے اور جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اسی کے تابع فرمان ہے خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم ایک نئی سیریز شروع کریں گے عرش الہی حقیقت اور تقاضے 10 پیپل انڈر دا تھرون آف اللہ سبحان تعالیٰ قیامت ایک حقیقت ہے جب اس حقیقت کو آپ جان جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے بغیر آپ اور میں بچ نہیں سکتے تو قیامت کے میدان میں ایک بہت اہم چیز ایک بہت بڑی چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرش الہی ہے عموماً قیامت کے بیان میں ہم بہت ساری چیزوں کو جب پیش کرتے ہیں تو اس وقت ہم بہت زیادہ نہیں سمجھ پاتے تو ہماری یہ 4 ڈیز کی سیریز ہوگی انشاءاللہ جس کا آج day 1 ہے ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے عرش کیا ہے عرش کی حقیقت عرش سے متعلقات کیونکہ جب تک کسی چیز کا پتہ نہ ہو پھر اس کے بعد وہ کہاں کیا ہے تب تک سمجھ نہیں آتی تو اس پوری سیریز کا ایک چند جملوں میں آپ کو خلاصہ دے دوں ہم اس میں آج پہلے ڈے میں فرسٹ ڈے میں انشاءاللہ قیامت اور عرش دونوں کا آپس کا تعلق دیکھیں یعنی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ قیامت کے میدان سے گزر رہے ہیں اور پھر نیکسٹ سیشن سے آن ورڈ دن جو ہوں گے اس میں ہم 10 خوبیوں 10 ایسی عادات جس کو اپنانے پہ عرش الہی کے سائے کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں اور خاص طور پہ آپ دیکھیے ہماری یوتھ اس سیریز کو خاص طور پہ ویکینڈ پہ رکھنا اس وقت اس پہ بات کرنا اس لیے بھی ہے کہ ہماری وہ نسلیں جو حقیقت میں دنیاوی تعلیم میں اور کئی اور کیریئر بلڈنگ میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور آپ لوگ بعد میں بھی جو اس کو سنیں گے تو اس کو آپ لوگوں نے ایک قسم کا مدر ڈاٹر سیشن میں لے کے چلنا ہے ہمارے یہاں معروف روایت ہے جو انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئے گی نیکسٹ سیشن جو ہمارا ہوگا اسی سے شروع کروں گی کہ جس میں 7 لوگوں کے عرش کے سائے میں ہونے کی بات بڑی معروف ہے اس پہ بات کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ 7 نہیں حافظ ابن حجر العسقلانی ماضی کی ایک بڑی معروف ہستی ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ کے مطابق 27 لوگوں کے نام دیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور ہمارے اسلاف کی عادت تھی کہ وہ خود سے نہیں بولتے تھے وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اگر پیارے نبی کی عادت تھی تو سلف صالحین جو قرآن سنت سے تعلق رکھتے تھے وہ بغیر حدیث کے کسی ریفرنس اور بغیر کسی قرآنی آیت کے کوئی بات نہیں کرتے تھے یہ تو اب آج آپ کی میری قسمت کہہ لیجئے کیلو کال لوگ حدیث بیان کیے بغیر سارا مسئلہ پورے واٹس ایپ پہ دہرا دیتے ہیں اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ عام کرتے ہیں ایسا نہیں تھا حافظ ابن حجر العسقلانی نے 27 لوگوں کو پیش کیا لیکن جب بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سنت میں کیا مضبوطی ہے तो सारा कुछ करने के बाद वो भी होंगे, हम उसका इनकार नहीं करते लेकिन उसको बयान नहीं करेंगे। यहां मैं आपके सामने 10 लोग रखूंगी सीरीज के अंदर। ये 10 खूबियां हैं कि 10 लोग जिनका तذکرہ कुरान और हदीस से हमें मिलता है, लेकिन उधर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अर्शे इलाही के बारे में। हकीकत यह है कि अर्श का लफ्ज उर्दू में भी हम बोलते हैं, ये डिक्शनरी में भी है, अरूशा, अर्श, अरीश, आराइश, अलिफ से हो तो वाला होता है, लेकिन आम तौर पे अल्लाह ताला का ये अर्श क्या है? अभी जो मैंने आपके सामने आयत रखी है, रहमान वल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अर्श पर अपने आप को मुस्तवी किया। मैंने आज आपके इस कोर्स के लिए दोबारा कोशिश की कि मैं देखूं कि पूरे कुरान पाक में कितनी आयात में अर्श का तذکرہ है। वैसे तो अर्श का लफ्ज अगर आप यानी ये रूट वर्ड डालकर कुरान में ढूंढेंगे तो 32 जगह, यानी मुझे टोटल 32 आयात मिली जिसमें आयन रोशीन को यूज किया गया, लेकिन उन 32 में से 10 आयात कुछ और हैं। जैसे पहली ही आयत सूरह बकरा में आपको मिलती है, उकल्लसी मर अला करियतिन वहिया खाविया अला उरूशिहा, अला उरूशिहा छत के मानों में है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं तो सूरत अल अनाम की आयत 141 में हमें छतों का तस्कर है, बहुवल्लज़ी अनशा जन्नात मारूशातिन वगैरह मारूशात, ठीक है। लेकिन वो आयात जिनमें अल्लाह ताला के खुद अर्श पे होने या किसी भी जिमन में अर्श इलाही का तस्करा है, तो वो आयात मुझे 22 मिली। तो अब आपने क्विकली चंद आयतों के नंबर्स लिखने हैं ताकि बाद में आप कुरान पाक से जाकर उन आयतों को खोलें और फिर उसको नोट करेंगे। सबसे पहले सूरत अल अराफ की आयत 54 है, फिर सूरत यूनस आयत 3, रात 2, फुरकान 59, सजदा 4, सूरत हदीद की आयत नंबर 4। अर्श को अगर आप डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे तो आइन रोशीन इसका रूट होता है, और अरबी लुगत में बादशाह के बैठने के लिए जो तख्त लगता था पहले दौर में, आजकल तो कुर्सियां ही होती हैं, लेकिन माजी में जो बादशाह के तसव्वुर के साथ उसके तख्त का तذکرہ था, उसको लोग अर्श कहते थे, जिससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आज जिस मौजू पे आप और मैं बात करने लगे हैं तो अर्शे इलाही अल्लाह सुबहाना ताला के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। शरीयत में अर्श से मुराद वो अजीम अर्श है जिस पर अल्लाह ताला मुस्तवी है, यानी इस्तवा का लफ्ज जो है वो ये नहीं कि बैठा है ठहरा है, जब अल्लाह ने लफ्ज मुस्तवी कहा है तो मैं भी मुस्तवी बोलूंगी। तो अर्श क्या है? अल्लाह के मुस्तवी होने की जगह, और ये अर्श तमाम मखलूकात के ऊपर है और तमाम मखलूकात से बड़ा है। यानी आप देखेंगे अभी तो हैरान होंगे और आप इसको महसूस भी करेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ अभी हमें दिखाना है। हम तो अभी डिज्नीलैंड को देखने के शौक में और हम दुनिया की चीजों को देखने के शौक में वर्ल्ड टूर का शौक रखते हैं ना। एक दफा आपको जब क्यामत के मैदान की कहानी समझ आएगी ना, तो सिर्फ खराब ही चीजें नहीं है वहां, वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी है। हम जब कब्र की बात करते हैं तो अजाबे कब्र, भाई तुम कब्र की रौनकों का जिक्र क्यों नहीं करते? और जब क्यामत के दिन की बात है तो हौलनाकियां, भाई तुम क्यामत के दिन के उस मैदान के अंदर खूबसूरत जो चीजें हो रही हैं उसका तذکرہ क्यों नहीं करते? एक सिख के कुछ लफ्ज थे तो उसने एक मुसलमान को इंडिया में कहे कि भाई तुम लोगों की जो कुरान है ना, इसको पढ़ के डर बड़ा लगता है। अब उस बेचारे ने तो नहीं पढ़ा होगा ना, यानी कुरान को पढ़कर बड़ा डर लगता है। इसका नाम था श्री तेजपाल सिंह, इसका बहुत मारूफ हुआ था ये जुमला, कहने का इसमें तो बस आग और जहन्नुम की बातें हैं। अब ये गैर मुस्लिम के तासुरात हो सकते हैं, उन्होंने शायद हिंदी में कुरान का तर्जमा पढ़ा, लेकिन अगर एक मुसलमान अमल करते हुए अपने अंदर इस्लाम की खूबियों को लाते हुए क्यामत का मंजर, कब्र की बातें पढ़े तो लबों पे मुस्कुराहट भी आ जाती है कि ये होगा कब, क्योंकि बलिल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, इंसान अपने नफ्स पे खुद कादिर है। हकीकत है कि कुरान में सबसे बड़ी बात तो यही है, वो आखरत की है, लेकिन आपको मुझे अभी अमल का मौका मिला हुआ है, आप और मैं अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो बात करते हैं अर्श इलाही पे। कुरान पाक में अर्श की 3 सिफात बयान की गई हैं, नोट करिएगा 1, 2, 3 करके, यानी किसी भी चीज को जानना हो तो उसकी सिफात और उसकी खूबियां देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज के अर्श अजीम होगा, اس کو عرش عظیم کہا گیا اور یہ کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، سورت مومنون کی یہ آیت نمبر 86 ہے، اللہ تعالیٰ کا پھر فرمان کہ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگلی صفت نوٹ کیجئے گا، عرش کا کریم ہونا، عزت والا ہونا، اور اس کی دلیل سورت مومنون ہے آیت نمبر 116، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ بلند شان والا حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا مالک ہے. تو عرش کی خوبی کیا ہے کہ عرش عزت والا. آپ دیکھیے دنیا میں یہ لفظ کتنا معروف ہے، ہم کس خوبصورت طریقے سے ان ساری چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں اردو زبان بھی آتی ہو. اور میں سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان جن کو اردو آتی ہے وہ کتنے خوش قسمت ہیں. کیا لفظ عظیم کبھی نہیں سنا آپ نے؟ میں نے نام بھی انسانوں کا بھی ہے دوسروں کا ہے، تو عرش عظیم ہے. کیسے عظیم ہے آپ امیجن تو کیجئے. پھر عرش کریم ہے، کرامت والا. کسی کا بہت ہی اعلیٰ ہونا بیان کیا جائے تو اس کو کریم کہتے ہیں. تو عرش کے اندر خوبیاں بھی ہیں. تیسری صفت نوٹ کریں گے آپ، اور وہ ہے عرش مجید ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، فتعال جدو کا حمید و مجید، درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں. تو عرش مجید یعنی بزرگی والا، یہ بات سورت بروج کی آیت نمبر 15 میں ہے، ذل عرش المجید، وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے، یعنی جو بڑی عزت والا ہے. اب یہ تین خوبیاں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، آپ سب بولیے، پہلی خوبی عظیم ہے، دوسری کریم ہے، شاباش، تیسری مجید ہے. ان تینوں کو پڑھنے کے بعد دل میں آتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید جانیں. تو کچھ چیزیں قرآن اور سنت سے کہ عرش کس طرح کا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. تو پہلی بات تو لکھیے کہ شریعت میں اس کی ہمیں مزید تفصیلات بہت زیادہ نہیں ملی. یومنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے ان باتوں میں زیادہ نہیں پڑھتے. آپ کو ہزاروں چیزیں ملیں گی کتابوں میں، اقوال زری میں، سنت کے خلاف کوئی باتوں میں، کیونکہ ایسے موضوع اچھے بڑے لگتے ہیں. اور کچھ سکالرز کہوں یا کچھ مبلغین نے محفلیں گرمانے کے لیے وہ ساری ضعیف اور غریب روایات بھی لوگوں کے گوش گزار کر دیں کہ جس میں میلوڈیس بات ہے، کوئی لفاظی کر رہا ہے. یعنی اگر میں نے آج محفل گرم کرنی ہو تو میں تو جھوم جھوم کے آپ کو عرش کے قصے سناؤں. لیکن لوگوں نے ایگزیجریشن کی. آج ہمارے پاس خاص طور پہ اردو سپیکنگ لوگوں نے جس طرح سے دین کی خدمت کی ہے نا، اس میں یہ بہت مسئلہ ہوا کہ لوگ کتابیں تو پڑھے نہیں، علم تو لیا نہیں، تو اب جو بات ہے مجھ سے سنیں گے آپ کو یاد رہ جائے گی نا. تو لوگوں نے لوگوں سے سن کے علم لیا. لیکچر سننے کو علم کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک تعارف ہوتا ہے، ایک بس انٹروڈکشن، ایک گیٹ ہے، آپ نے دروازہ کھول دیا. علم لیا جاتا ہے بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے. آپ جتنا جھک کے، عاجزی کے ساتھ دب کے لکھنے میں، پڑھنے میں، بیٹھنے میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں نا، اتنا علم کھلتا ہے. یعنی جو زمین پہ بیٹھتے ہیں ان کو کرسی پہ بیٹھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو نہ لکھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی جو قرآن میں اور سنت میں. میں اور آپ عرش کے بارے میں کچھ بھی نہ جانیں تو بھی ٹھیک ہے، ہمارے اسے کیا لگے. اور یاد رکھیے، زندگی کا ایک اصول بنا لیجیے ابھی سے اپنے اس سیشن کے دوران کہ جن چیزوں سے عمل کا تعلق ہو اس پہ بات کیا کریں. عملی باتیں پیچھے پڑ جاتی ہیں اور ایسی باتیں لوگوں کو یاد آ جاتی ہیں، یہ حدیث اتنی دفعہ بیان کر دی تو یہ ہوگا، وہ کی تو یہ کیا. ہر سال نئے نئے طریقے نکل آتے ہیں، رمضان آتا ہے تو یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، آج کل ایک بڑی معروف سی چیز ہے تاک راتوں کی عبادت. اب 1000 سال کی بات کو ضرب جمع تفریق کر کے کسی وقت کسی امام نے بتا دیا کہ دیکھو ایک نیکی اتنی ہو جائے گی، ایک اتنی. لوگوں نے وظیفے بنا کے امام سدیس کے نام پہ ساری دنیا میں وائرل کر دیے. دیکھیے وہ امام سدیس کیوں نہ ہو، آپ نہیں، وہ ان کا عمل ہو سکتا ہے، ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، لیکن آپ اور میں اس کو بلا سند آگے نہیں بیان کر سکتے. اسی پہ تو آج ہمارے پاکستان کلچر میں کتابوں کا بھرمار ہے، علماء کی باتیں، اقوال، ان کے تجربات، یہ صورت اتنی دفعہ پڑھو، یہ پڑھو. آپ پڑھیے، لیکن آپ گنتی جہاں مقرر کریں گے آپ کو کوئی دلیل دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم عرش کے بارے میں اتنی ہی بات کریں جتنی ہے. تو پوائنٹس میں لکھواؤں گی. پہلی بات ان سب میں، پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. आज किधर है वो भी आगे आ रही है रिवायत, लेकिन इब्तदा से बात शुरू करते हैं। अर्श पानी पर था, अब नहीं, इतनी बड़ी बात आपने कर दी तो जरा हमें इसकी दलील दीजिए। तो दलील ले लीजिए, सही बुखारी की रिवायत है 7418। हजरत इमरान बिन हुसैन एक सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि मैं एक दफा अल्लाह के नबी की मजलिस में मौजूद था। पहले तो उन पर रश कीजिए, क्या उस मजलिस का रंग होता होगा जहां बोलने वाला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और सुनने वाले रदी अल्लाह अनहु व रदू अनहु। क्या वो महफिलें थी, आज तो हमने वो चखा ही नहीं है। हम तो बड़े लाडले और बिगड़े हुए लोग, 3 घंटे टिक के फिल्म देख लेंगे, 7-8 घंटे का मैच का सेशन देख लेंगे, लेकिन इल्म के लिए हमारी कमर में दर्द, हमारे पाँव में दर्द। हम घर से सुनेंगे तो क्या घर से सुनते नहीं, बाद में सुन लेंगे अपनी सहूलत पे, तो फिर क्या फोन बीच में नहीं आते, तो फोन आते हैं तो बाद में ये तो बी तो सी तो डी, हम सब जानते हैं आज हमारा इल्मी राबता कितना कमजोर है। तो सबसे पहली चीज, अल्लाह का अर्श पानी पर था। रिवायत क्या है, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे थे, कान अल्लाह वलम यकुन शैयुन गैरू, अल्लाह था और कोई चीज नहीं थी उसके सिवा। इमेजिन कीजिए, व कान अर्श वलमा, और उसका अर्श पानी पर था। वकतब फिज जिक्री कुल्ल शैइन व खलक समावाती वलर्थ फनादा मुनादिन जहबत नाकतु कयब्नुल हुसैन फन तलकतु फइजा हिया यक्तउदु नह सराब फवल्लाही लवदितु अन्नी कुंतु तरकतुहा। फरमाया अव्वल अल्लाह की जात थी, इसके सिवा कोई चीज ना थी, और इसका अर्श पानी पर था, और लौहे महफूज में इसने हर बात लिख दी, यानी ये तब हो रहा था जब दुनिया बननी शुरू हुई, और इसने जमीन और आसमान पैदा किए। अभी ये बातें हो रही थी कि एक शख्स ने आवाज दी, ए इब्ने हुसैन, तुम्हारी ऊंटनी भाग गई, लिहाजा मैं चला गया तो देखा वो ऊंटनी सराब से आगे जा चुकी थी। अल्लाह की कसम, मेरी ख्वाहिश थी कि काश इस ऊंटनी को छोड़ देता और वहां से ना उठता तो बेहतर था। यानी आपको कोई कह दे आपकी गाड़ी पार्किंग में थी और वहां टिकट लगने लगा है, तो आप तो सरपट भागेंगी ना चाबी लेकर। ये कहानी है कि मैं क्या ऊंटनी के चक्कर में इल्म की महफिल से उठ के आ गया। अदब लीजिए इल्म का, बी फोकस्ड। हम क्या कहते हैं, हमारे पास तो वक्त ही नहीं। आज इंसानों को अगर आप देखते हैं तो आपकी मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कोई काम करें, आप अपने बच्चों को पालें, मियाँ की खिदमत करें, ससुराल में हैं, बुजुर्गों की खिदमत करें, या दीन का काम करें, आप जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की सूरत में एक अमल की बात सिखा दी कि उनको अफसोस हो रहा था कि मैं बीच में उठकर क्यों गया। आज से आपने मैंने भी यही नीयत और यही इरादा करना है और यही कोशिश भी करनी है कि हमें बीच में ना जाना पड़े। खुलासा कर देती हूँ कि अल्लाह ताला ने पानी को पैदा फरमाया, ऐसे ही अर्श को भी पैदा फरमाया, और पानी और अर्श दोनों अल्लाह की मखलूक है। इसमें एक आपको साइड का पॉइंट भी मिल गया कि अर्श भी अल्लाह की मखलूक है, और अर्श इतना बड़ा है तो फिर अल्लाह कितना बड़ा होगा। आगे लीजिए सेकंड पॉइंट, अल्लाह का अर्श जन्नत के ऊपर है। आप इसकी मुझसे दलील मांग लीजिए, तो हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत आपको मिलेगी सही बुखारी में 2790, 2790 नंबर है इसका, ताकि आप खुद भी सर्च करना चाहें तो कर लीजिए। रिवायत क्या है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जन्नत के दरजात बयान फरमाए और कहा, आपने फरमाया, मन आमन बिल्लाही व रसूलिही व अकाम अस्सलात व साम रमदान कान हक्कन अलल्लाही अन युदखिलहुल जन्ना जाहद फी सबीलिल्लाह औ जलस फी अर्दिही अल्लती वुलिद फीहा फकालू या रसूलल्लाही अफला नुबश्शिरुन नास काला। आपने फरमाया, इन्न फिल जन्नति मियत दरजा अद्दहल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह मा बैन दराजतैनी कमा बैन समाई वल अर्द फैजा साल तुमुल्लाह फसलूहुल फिरदौस फैन्नहु औसतुल जन्ना व आलल जन्ना अराहु काला व फौकहु अर्शुर रहमान मिनहु तफज्जरु अनहारुल जन्ना। सुभान अल्लाह। अब एक गो में इसका तर्जुमा सुनिए और आप खुश होंगे और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें इस जन्नत में ले जाए जहां इतना कुछ है। आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, नमाज अदा करे, रोजे रखे, तो अल्लाह के जिम्मे ये वादा है कि वो इसको जन्नत में दाखिल करेगा, ख्वाब अल्लाह की राह में जिहाद करे या जहां पैदा हुआ हो वहीं ही बैठा रहे। यहां से जरा सा अमल का नुक्ता साथ ले। पहले अमल बताया नबी ने, पहले आमाल गिनाए हैं फिर जन्नत की खुशखबरी दी है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। हम पहले सवाब पूछते हैं, होगा क्या, मिलेगा क्या, ये वजीफा करने से क्या होगा, 40 साल के गुनाह माफ होंगे। लोगों ने ऐसी अजीबोगरीब बातें की, ये एक दफा आयत पढ़ लो तुम्हारे 84 साल के गुनाह माफ है। भाई पहले आयत पढ़ने पे हो कि पहले गुनाहों को देखना है? तो यहां अमल का नुक्ता लिखिए, अमल की रगबत दिलाइए और जो उसके रिवॉर्ड्स हैं अच्छी बातों पर वो बात की बात है। इसी तरह बुराई से नफरत दिलाइए, फिर बुराई के बदले में जो जहन्नुम मिलनी है ना वो बाद में। लोग पहले थंबनेल पे जहन्नुम की आग लगा देते हैं, फिर कहते हैं शराब पीने से आग मिलेगी। लोगों को शराब से डराइए, जहन्नुम से मत डराइए। लोगों को आग की बातें बताकर दूर ना कर दीजिए, पहले उनको उन बुराइयों की, जिना की, बदकारी की, बेहयाई की दिखाइए। वो जो गुनाहों के ऊपर एक वनीर चढ़ा हुआ है ना बुराइयों के ऊपर, गोल्डन पेपर, जैसे मिट्टी की दीवार के ऊपर आप गोल्डन पेपर लगाते हैं ऐसे लगता है गोल्ड की है। आज लोगों ने कुछ ऐसा ही किया, तो लोगों के दिलों में बुराई से नफरत लाइए और नेकियों का शौक लाइए। यहां तक ये समझ आया? आगे साहबा का जवाब सुनिए। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हम लोगों को खुशखबरी ना सुनाए? रगबत थी ना उनके दिलों में खुशखबरियां सुनाने की। आपने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं, और हर 2 दर्जों के दरमियान इस कदर फासला जिस कदर आसमान और जमीन के दरमियान है। बस तुम जब अल्लाह से दुआ मांगो तो इससे फिरदौस तलब करो, क्योंकि वो जन्नत का अफसल और बेहतर हिस्सा है। रावी का ख्याल है कि आपने इसके बाद फरमाया, इसके ऊपर रहमान का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं। क्या पता चला? अर्श वो जगह है जहां से जन्नत की नहरें फूटती हैं। क्या नहीं दिल करता अच्छे काम करके वहां पहुंचने को और वो देखने को? मेरी जुबान से अक्सर लोगों ने सुना है नाम नियाग्रा फॉल का, ख्वाहिश होती है कि हम जाकर देखकर, जब वहां जाकर अब खड़े हो जाते हैं ना तो एकदम सूरह मोहम्मद की आयतें याद आ जाती हैं कि जन्नत में 4 किस्म की नहरें हैं। खास तौर पे जब रात के वक्त वहां पे लाइटें डलती हैं ना डिफरेंट कलर की, तो 4 रंग का पानी गिरता है। तो बिल्कुल मुझे सूरत मोहम्मद की आयत याद आ रही होती है कि अनहारों में लबन। और तो मैं सोचती हूँ कि कब देखेंगे ना जन्नत। अब दुनिया में आपको मैं इतना शौक दिलाऊं, आप कहेंगे हाय कब जाएंगे ना नियाग्रा, हमें भी कभी टोरंटो का वीजा मिल जाए, हम भी जाकर देखें, सोचेंगे ना? तो जन्नत का शौक भरिए, जन्नत की नहरों का तस्करा, जन्नत की ये बातों का तस्करा। खास पर जो अर्श की बातें आपको सुना रही हूं, मैं इस रगबत में सुना रही हूं कि इसको पाने के लिए चल पड़े। देखिए, 2 चीजें हैं जो बंदे को मोटिवेट करती हैं, या खौफ या शौक। रगबम व रहबन, इसकी दलील है सूरह सजदा, रात को पढ़ते होंगे आप। रगबम व रहबन, रगबतें, शौक, मोटिवेशन, पाने का शौक। ये आपके बच्चे ऐसे ही नहीं जाके 5-5 दिन जाके स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते और 4-4 10-10 साल लगा देते यूनिवर्सिटियों में। रगबत है कि इसके बाद पैसे कमाने हैं, 5-6 फिगर सैलरी मिल जाएगी, या कोई प्रोफेशन मिलेगा, या इज्जत मिलेगी, या वो डॉक्टर का कोट पहन कर फिरेंगे तो लोग वाह-वाह करेंगे। ये रगबत उनको बुलाती है कि मेरे आपके इस कलाम में कोई कशिश नहीं कि लोग हमारी इस बात को सुनना पसंद करें। क्या लोगों ने खुदा छोड़ा हुआ है? क्या लोग सिर्फ दुनिया के लिए जीते हैं? नहीं, अभी वो रगबत नहीं और रहब भी नहीं है। ये सारी मस्तियों में डूबे हुए सब नशों वाले भी उठ के खड़े हो जाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारी नींद नहीं पूरी होती, आंख नहीं खुलती, रात बड़ी छोटी है। गुनाहों के लिए तो रात वाकई छोटी है, और अगर इबादत करनी है, अगर रब को राजी करना है तो बहुत अलहमदुलिल्लाह। तो तजाफा जुनूब मदा जी, अल्लाह कहते हैं उनकी तो करवटें बिस्तरों से लग रहती हैं। यदून और अब्बाऊ खौफम व तमा, कभी खौफ से पुकारते कभी तमा से पुकारते, तो कभी रब को खौफ से पुकारिए कभी शौक से पुकारिए, यही नेचुरल है। कुरान में यही है, कहीं जन्नत की आयतें तो कहीं जहन्नम की बातें। अल्लाह के नबी के 2 टाइटल, नजीरम व बशीरा, आप मुंजिर भी थे और मुबशिर भी थे, आप जन्नत की खुशखबरियां भी देते थे, जहन्नम से डराते भी थे। ये नहीं किया कि गलत काम करने वालों को भी जन्नत की खुशखबरियां दें और अच्छे काम करने वालों को भी गिल्ट में ही रखो हमेशा और उनको भी जहन्नम में पहुंचा दो। याद रखिए, आज एक और अमल का नुक्ता लिखिए कि हमारी तालीम और हमारी तबलीग में बैलेंस होना चाहिए। लोगों की जान ही ना निकाल दो कि जो थोड़ी बहुत नेकी करने का शौक था वो भी चला जाए, कि हमने जाना ही आग में है तो फिर और शौक इधर ही पूरे कर ले, और ना दूसरों को नेकियों के नाम पर इतना ऊपर चढ़ा दो कि उन वो बेखौफ ही हो जाए कि हमने कौन सा आग में जाना है। बैलेंस रखिए। वजालना को उम्मतम वसता, हमारी उम्मत उम्मत वसत है। तो बहरहाल इस जन्नत में जाने की दुआ कीजिए। ए अल्लाह, मैं आप सब के लिए जो यहाँ मेरे साथ भी मौजूद हैं और जो किसी मजबूरी की वजह से इस वक्त घर से सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस के उस मुकाम पे ले जाना जहाँ से अर्श और अर्श की जन्नत की नहरें दिखती हैं। ये दुआएं लेने का वक्त होता है, इससे तो दिल खुलते हैं, इसके बगैर तो मुर्दगी। आप कहते हैं आज संडे है, मुझे कोई ना बुलाए, मैं नहीं आ सकती, तो घर बैठिए मुरझाइए, चार कप भी चाय के पी लेंगे, शाम में सर में दर्द ही हो रहा होगा। आधा दिन सोते भी रह दें, आप जोहर तक 3 बजे भी आजकल सो लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको अल्लाह की इस बात को सुनने और सुनाने और अल्लाह के रास्ते के कामों में मिलता है। तो बहरहाल तीसरी चीज पे ले चलती हैं आपको, अर्श के मुतल्लिक। पहली क्या थी, फौरन बोलेंगे आप, पानी पर था। दूसरी क्या पड़ी अभी, जन्नत का बुलंदतरीन मकाम जहां से जन्नत की नहरें फूटती हैं। तीसरी बात, अर्श इलाही के पाए हैं। अब आप, मैं यहां सोचेंगे नहीं, हदीस पढ़ के इस पे बात करती हूँ और इसकी दलील आप मुझसे मांगेंगे। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ही ये हदीस है, सही बुखारी में 2412 नंबर है। और इसी तरह से अबू सईद अल खुदरी से जो रिवायत है ना, बेसिकली जो अबू सईद खुदरी की रिवायत है वो बुखारी में 2412, और एक हदीस एक से दूसरी जगह भी हो सकती है। अगर आपको मेरे लफ्ज़ थोड़े बहुत मुख्तलिफ भी दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक हदीस एक से ज्यादा जगह से मिलती है। जो अल्फाज मैं आपको सुना रही हूँ वो अबू हुरैरा की रिवायत के है। कहते हैं कि इस तब रजुलान रजुल मिनल मुस्लिमीन व रजुल मिनल यहूद, कहते हैं कि एक मुसलमान और एक यहूदी, दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, कलम गलोच पे बात आ गई। मुसलमान कहने लगा, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों पर बर्तरी दी। यहूदी ने कहा, उस जात की कसम जिसने हजरत मूसा को तमाम अहले जमीन पर बरगजीदा किया। इस पर मुसलमान ने हाथ उठाया और यहूदी के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बस यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपसे अपना और मुसलमान का माजरा कह सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुसलमान को बुलाकर सवाल किया तो इसने सारा किस्सा बयान कर दिया। ये आयतें पता किस आयत की शान में ये हदीस आती है, तीसरे पारे की पहली आयत, तिल का रसूल कद फद्दलना बादहुम अला बाद, कि तुम रसूलों में से एक दूसरे के नामों पे झगड़ा ना किया करो, हमारे लिए भी इसमें अमल की बात है। आज हम नबियों के नामों पे तो नहीं लेकिन आइमे कराम और मजहबी रहनुमाओं के नाम पे झगड़े करते फिरते हैं। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं, कोई गुलाब है तो कोई मोतिया है तो कोई चंपा है तो कोई चमेली है, कहीं आम है तो कहीं अमरूद है तो कहीं अनार है, फितरत में डाइवर्सिटी है, तुम क्यों झगड़ते हो, लड़ते क्यों? तो लड़ने वाला दीन हमें अच्छा नहीं लगता, ना हमारे नबी को अच्छा लगता था। तो बहरहाल अल्लाह के नबी के अब जरा जुमले सुनिए। आपने फरमाया, तुम मुझे हजरत मूसा पर बर्तरी ना दो, क्योंकि क्यामत के दिन जब सब लोग बेहोश हो जाएंगे और मैं भी बेहोश हो जाऊंगा और सबसे पहले मुझे होश आएगा, तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का एक पाया पकड़े खड़े हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो बेहोश होकर मुझसे पहले होश में आ गए या वो इन लोगों में से थे जिनको अल्लाह तआला ने बेहोशी से मुस्तस्ना कर दिया, यानी जिनको बेहोश किया ही नहीं। पहले तो यहां अल्लाह के नबी की आजिज़ी देखिए, कितना अपने अंदर आप आजजी महसूस करते थे और डाउन टू अर्थ थे। दूसरी बात है कि दूसरे की खूबी बयान कर देनी चाहिए। हम कहते हैं हम ही बड़े हैं, किसी दूसरे दीनदार की कोई बड़ी बात मिल भी जाए तो कहते चुप चुप उसकी नहीं बतानी। नहीं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं भाई मैं होश में आऊंगा तो मूसा पहले ही होश में आए खड़े हैं। मूसा को देखकर तो मैं समझ गया कि ये मुझसे ज्यादा जल्दी आ गए हैं। फलादरी, देखिए अंदाज है, फलादरी मुझे नहीं पता, अकान फी मन साइका, मुझे नहीं पता कि वो बेहोश हुए भी कि नहीं, यानी मैं गैब नहीं जानता, जो अल्लाह ने नहीं बताया वो मुझे नहीं पता। पता क्या चला इस हदीस से, इस नुक्ते के अलावा, कि दूसरों की खूबी को मान लेना चाहिए। कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप में वो खूबी है नहीं और आप दूसरे की छुपाए फिर रहे हैं और लोगों को अंधों में काने राजे बन के दिखा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है। इससे बड़ी खूबी ये है कि आप दूसरे की खूबी को लीजिए, उससे भी फायदा उठा लें, वो भी आपकी खूबी बन जाएगी। लेकिन इससे पता क्या चला कि मूसा अर्श का पाया पकड़े हुए थे। तो अर्श इलाही के पाए हैं, अब आप पूछे कैसे हैं? हमारी कुर्सियों जैसे हैं, हमारे मेजों जैसे हैं, पीड़ों जैसे हैं, चारपाइयों जैसे हैं, लादरी। देखिए, याद रखिए, जैसे अल्लाह के लिए कोई हम मिसाल नहीं दे सकते ना, बिला तकय्युफ, बिला तमसील। अल्लाह का तस्करा होता है, अल्लाह ने कहा मेरा हाथ है तो हाथ है, उसके दोनों हाथ दाएं हैं तो दोनों हाथ दाएं हैं, अल्लाह मुस्कुराता है तो मुस्कुराता है। लेकिन जिस तरह अल्लाह की जात को हम देखते हैं, इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला की किसी सिफत और खूबी के बारे में भी आप और मैं ये नहीं कह सकते कि ये कैसी है। जैसे अर्श के बारे में आप और मैं तफसीलें नहीं बयान कर सकते। कुर्सी बना दें आप, जैसे बादशाह की कुर्सी होती है, तख्त बना दें बड़ा ऊपर चांद तारे लगा के, नहीं कर सकते। सॉरी, आपको अपने वो जिसको कहना चाहिए ना कि इमेजिनेशन में भी कोई ऐसी चीज नहीं लानी चाहिए, बस एक हैवला ले आइए। मुंह से कहना तो दूर की बात है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कह दिया तो अर्श के पाए हैं।